హరే కృష్ణ లెక్చర్ బై సురేష్ కృష్ణ మరారి గురుజీ అట్ తిరుపతి గోపినాథ్ టెంపుల్ రికార్డింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ బై ప్రియాంక్ ఫోటో
भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन सुंदर श्रृंगार के साथ और तीन जो विग्रह यहाँ पर
राधा मदन मोहन जी राधा जी नहीं दिख रहे हैं सबके साथ लेकिन मदन मोहन जी हैं गोविंद देव जी हैं और गोपीनाथ जी हैं और ये तीनों जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो बोलते हैं संबंध अभिधेय और प्रयोजन तो हमारे यहाँ पर तीनों बोल रहे थे इनका दर्शन मात्र से है ना जी। वैसे बताते हैं जो हम लोग गुप्त वृंदावन अर्थात जयपुर में जब दर्शन करते हैं तो एक ड्यूटी हुई मदन मोहन जी के कहां पर करौली में और दूसरे हैं गोविंद देव जी जो कि राजा हैं किंग हैं पूरे जयपुर के और हमने देखा जब लोग यहाँ मंगला आरती जाते हैं सुबह सुबह मंगल पर दुकानदार स्त्रियां लोग सब लोग भागते हुए जाते हैं मंगला दर्शन करने के लिए और अपना काम शुरू करते हैं भगवान का दर्शन करने के बाद और उसके बाद उसी से 10 मिनट पीछे 15 मिनट पीछे अगर हम जाए तो वहां पर गोपीनाथ जी का भी दर्शन होता है। तो इन तीनों का दर्शन करते हैं अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने से पहले कर ले तो कहते हैं साक्षात उसे भगवान कृष्ण के दर्शन कर ले क्योंकि बताया जाता है कि इन विग्रह में किसी का जो फेस मुख है किसी का जो धड़ है और किसी के जो चरण है वो साक्षात भगवान कृष्ण से मिलते हैं क्योंकि जो वज्रनाथ ने जो कार्य किया था अपनी माता के कहने पर तो उन्होंने जो है उन तीनों विग्रहों के अलग अलग अंगों की तुलना भगवान को क्योंकि उत्तरायण में देखा था भगवान को तो उन्होंने बोला कि यह अंग इनसे मिलता है यह अंग इनसे मिलता है इस प्रकार बताया। लेकिन एक चीज और भी बताते हैं कि जो राधा रमन भगवान है वृंदावन में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी दंड के निधि से जिनकी वो अर्चन पूजा करते थे एक बार उनके मन में आया कि एक सेठ जो वृंदावन में सबको श्रृंगार की वस्तुएं बांट रहे थे तो उनके मन में आया कि काश मेरे भी जिन्हें पास भगवान फार्म में होते तो अच्छा था शालिग्राम शिलाएं तो गुण होता होती है ना तो इस रूप में भगवान क्योंकि हृदय में इच्छा हुई और अगले दिन क्या देखते सुबह दामोदर शिला से स्वयं भगवान प्रकट होकर स्वयं खड़े हैं राधा रमन के रूप में और ये राधा रमन जो है ये राधा रमन उन तीनों विग्रहों का जो बता रहे हैं किसी का मुख किसी का धन और किसी का चरण उन तीनों से मिलते और कहते हैं कि उन तीनों का दर्शन करना और राधा रमन जी का दर्शन करना एक समान है और राधा रमन जी का दर्शन करना उन तीनों का दर्शन करना गोलोक के कृष्ण का दर्शन करना एक समान है और यहां पर तीनों ड्यूटीज का दर्शन करना भगवान का साक्षात दर्शन के समान है। तो इतनी पावन जगह पर आए हैं और इतनी सुंदर स्थली है अभी हम लोग पहुंचे थोड़ा रात में तो ऐसे रात में शांति लोगों को लगता होगा लेकिन अगर दिन के समय भी अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे बड़ा मनोरम जो है दृश्य रहता है शहर की तरह यहां पर बहुत ज्यादा झंझट और उस तरह की चीजें नहीं है। हम लोग पिछले 5-6 साल से भगवान की कृपा से आ रहे हैं इस जगह पर तो जब पहली बार आए थे तो हमने वो वृक्ष भी देखे थे जिस वृक्ष के नीचे माधवेंद्र पुरी जी अपना भजन किया करते थे तो वो वृक्ष भी था यहाँ पर और वो वृक्ष फिर अब टूट गया तो जब तो बड़ा तना पड़ा था तो हमें याद हमने उसमें से कुछ लकड़ी ली हुई थी उसमें से तो ये वो पावन स्थली है जहां पर हमारे आचार्य ने जिसमें से विशेषतः माधवेंद्र पुरी जी ने भी भजन किया उनकी समाधि यहां बनाई गई। इसके अलावा इसी मंदिर के प्रांगण में हमने देखा जहां पर हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे उसके बाईं ओर एक जगह और है जहां पर बताया जाता है वो रसिक मुरारी जो थे जिन्होंने श्यामानंद तो से दीक्षा ग्रहण करी थी तब तो उनका नाम रसिकानंद हो गया था अपने पार्षदों के साथ वो यहां पर आए थे और बहुत अच्छे भक्त थे बहुत रसिक भक्त थे और काफी लोगों का उद्धार किया था उन्होंने तो उनकी भी समाधि वस्त्रों की समाधि है यहां पर उनके जो वस्त्र थे क्योंकि जो बहुत वीरान होते भगवान के दरवाजा बंद करके अंदर कीर्तन हो रहा था तो भक्तों को बाहर खड़ा करके रस्सी के मन तो ही अंदर चले गए और बड़ी देर तक दरवाजा खोलने का जब देखा तो है नहीं लेकिन वस्त्र पड़े हैं इसका मतलब क्या हुआ उन्होंने अपने शरीर को जो है विलय कर दिया भगवान गोपीनाथ जी के शिव। तो इस प्रकार से इनके वस्त्र बचे थे, तो इनके वस्त्रों की वहां पर फिर क्या दी, समाधि दी। और उनके जो और भक्त जो मृदंग करतार बजा रहे, जैसे राम भक्त बजा रहे थे अभी, तो उनके और भी पार्षद और शिष्य थे, उनसे रहा नहीं गया उनके विधान में, उन्होंने भी शरीर त्याग दिया, तो उनकी भी समाधियां हैं। कहां उनका इतना उच्च भाव भगवान के प्रति, और कहां हम लोग अभी प्रयास में है, उस प्रोसेस में है। तो ऐसे स्थान पर आकर भगवान से, भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भजन अभी रुक्मणी कृष्ण गुरु जी ने और मुरली कृष्ण ने जो बोल रहे थे गुरु जी के वर्ण का मतलब पढ़ रहे हैं, और भी मतलब इतना सुंदर है। जो हम लोग सुबह आज बात कर रहे थे अनर्थों की, तो हम देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक साधक के रूप में किस प्रकार जो है अनर्थों की चर्चा की है। ऐसी ऐसी बातें कही है भजन में, जिस तरह की लगता है कि हमारा दिल खोल कर रख दिया है, ऑपरेशन किया है, उन्होंने सारी गंदगी देखी है, अपने शब्दों में निकालकर सामने रख दिया भजन के रूप में। तो उन भजनों का जो मैंने जल्दी से पढ़ने का प्रयास करूंगा, फिर हम आगे प्रयास करेंगे बात करने का। हे गोपीनाथ, जो पहला भजन था, कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषय दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ, तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मती संसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूं। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। मेरा बल वह ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग रहा है कि तुम कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो दुर्जनों को भी तार सकते हो, अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है, जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी निराय करते हो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई। तो ये पहला भजन है, और हम इन शब्दों को अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार एक इतनी उच्च श्रेणी का भक्त उन सब बातों को हमारे सामने रख रहे हैं भजन के माध्यम से, जो जिससे कि एक साधक, एक भक्त पूरा जीवन संघर्ष करता है। और दूसरे भजन में जो भी मुरली कृष्ण ने बोला, उसका मीनिंग भी इसी प्रकार कुछ है। हे गोपीनाथ, कृपया संसार ज्वाला को शांत करो, अविद्या को तथा बारंबार जन्म मरण की यात्रा को मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हे गोपीनाथ, वास्तव में मैं काम का दास हूं, मेरे हृदय में सांसारिक विषय वासना का उदय हो रहा है, अतः कर्म की फांस कसती जा रही है। हे गोपीनाथ, मैं कब जागूंगा और काम रूप शत्रु को दूर फेंक दूंगा, तथा तुम कब मेरे हृदय में स्फुरित होंगे। हे गोपीनाथ, मैं तो तुम्हारा ही भक्त हूं, परंतु तुम्हें छोड़कर अपना वास्तविक धन बुलाकर मैंने इस जल जगत का भजन किया है। हे गोपीनाथ, तुम तो सभी कुछ जानते हो, अपने सेवक को दंड दे चुकने के बाद अब तुम कृपया उसे अपने ही चरणों में स्थान दे दो। हे गोपीनाथ, क्या यही तुम्हारा निर्णय है कि मुझको अपने से विमुख देखकर तुम अपने सेवक को छोड़ दो और उस पर कर्ण भर भी करुणा ना करो? हे गोपीनाथ, मैं तो अत्यंत मूर्ख हूं और मैं अपना भला कभी नहीं समझ पाया, इसलिए मेरी ऐसी दशा है। हे गोपीनाथ, तुम तो सर्वोत्तम पंडित हो, कृपया इस मूर्ख का मंगल करने का उपाय खोजो और कृपया इस दास को पराया ना समझो। तो ये दो भजन है। वैसे तो गोपीनाथ के तीन भजन है, उसका फिर मैं चाहते मुड़ी पढ़ देता हूँ। ये भजन बहुत अच्छा है और इस भजन में भी गोपीनाथ से प्रार्थना की गई है। कह रहे हैं, गोपीनाथ मेरे पास सफलता का कोई उपाय नहीं है, किंतु तुम कृपा करके यदि मुझे ग्रहण कर लो तो मेरा इस संसार से उद्धार हो सकता है। वो गोपीनाथ, मैं माया के फेर से मैं पड़ गया हूँ, धन स्त्री तथा संतान ने मुझे घेर लिया है और काम ने मुझे जर्जित कर दिया है। हे गोपीनाथ, मेरा मन पागल है तथा किसी का शासन नहीं मानता, यह सदा अचेतन रहता है तथा घोर विषयों में पड़ा रहता है। हे गोपीनाथ, मैं अपनी हार मान गया हूं, मेरे अनेक यत्न विफल हो गए, अब तो तुम ही एकमात्र भरोसा हो। हे गोपीनाथ, मैं प्रगति कैसे करूं जबकि मेरा मन प्रबल इंद्रियों के वशीभूत है तथा सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति से आसक्ति नहीं छोड़ता। हे गोपीनाथ, मेरे हृदय स्थल में बैठकर मेरे मन का शमन करके मुझे अपने निकट ले चलो, इस प्रकार इस जगत की घोर विपदाओं का अंत हो जाएगा। हे गोपीनाथ, तुम इंद्रियों का दमन करो तथा मुझे इस घोर भौतिक अस्तित्व से तार दो। हे गोपीनाथ, भौतिकता की फांस मेरे गले के इर्द गिर्द जम गई है, अपनी कृपा की तलवार लेकर तथा इस बंधन को काट कर आप इस भक्ति विनोद को अपना विनम्र दास बना लीजिए। श्री भक्तिनाथ ठाकुर की, श्री राधा गोपीनाथ जी की। तो ये भजन इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर जी ने गोपीनाथ जी से प्रार्थना करी है और हम लोगों को भी ये भजन याद हो, प्रार्थना के रूप में रोज पढ़ें। तो कई बार लगेगा आप पढ़ कर कि हाँ, ये सब अनर्थों से मैं कहीं ना कहीं गुजर रहा हूं, और इन वैष्णवों की प्रार्थना को पढ़कर हमारा हो सकता है कि भाव उन वैष्णवों की तरह ना हो, उन स्थिति के ना हो, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं को दोहराने से उन वैष्णवों को भी कृपा प्राप्त होती है और क्योंकि हम उन्हीं भजनों को दोहरा रहे हैं तो भगवान का भी ध्यान हमारी ओर केंद्रित होगा, क्योंकि ये भजन वैष्णवों ने गाए हैं, है ना। तो भगवान को स्मरण है इन भजनों का भी, कि किस प्रकार मेरे भक्तों ने मेरा भजन किया है। और जब वही भजन हम जैसे लोग जो उसी श्रेणी में है जिनके विषय में बोला गया है, तो भगवान कहते हैं ओके, ये तो वही सॉन्ग है जो मेरे बहुत निकटवर्ती भक्त ने गाया था, तो हमारे ध्यान केंद्रित करेंगे और इन भजनों के जो है वजह से हमारे ऊपर भी कृपा होगी। तो अब हम लोग इस विशेष स्थान के विषय में कुछ प्रयास करेंगे समझने का, जानने का। इस स्थान को जो है अगर हम लोग जिस विग्रह का हमने दर्शन किया, इन विग्रहों के विषय में बताया गया है कि ये विग्रह आज से नहीं, ये त्रेता युग के विग्रह है। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में थे श्रीमती सीता जी के साथ, तो वहां पर एक दिन कुछ गायों को और सुंदर वातावरण को देखकर भगवान ऐसे मुस्करा रहे थे। तो सीता जी ने देखा और कहा, अरे आप ऐसे क्यों मुस्करा रहे हैं, ऐसा क्या स्मरण हो आया, मुझे भी बताओ। तो भगवान राम ने कहा कि सीते, अगले युग में मैं ऐसे ही स्थान को देखकर मुझे वृंदावन का स्मरण हुआ, क्योंकि मुझे अगले जन्म में, मतलब जो मैं अवतीर्ण होऊंगा उसमें मैं गोपाल के रूप में, मदन गोपाल के रूप में अवतरित होऊंगा और तुम भी होंगी मेरे साथ और तुम राधिका होंगी और हम लोग यहां पर बहुत से लीला करेंगे, मेरे साथ बहुत से गोप गोपिकाएं ये सब होंगी। सब बता रहे थे हम, और श्रीमती राधा राजी सॉरी सीता जी ने कहा कि क्या जो आप अवतार लेने वाले हैं मैं उसका दर्शन कर सकती हूं अभी क्या? तो और इतना बोलने पर उन्होंने जो है आचार्य लिखा के तंग तो भगवान के कमर में भी हाथ रखा, और उसके बाद अचानक भगवान राम ने अपने धनुष से अपना मतलब जो बाण होता है अपना बाण निकाला और एक ब्लैक स्टोन लिया बड़ा सा, और उसपे अपने बाण से ही कुछ कार्विंग करना शुरू कर दी, उसको कर्व करना शुरू कर दिया, उसमें पेड़ बनाया, उसमें पर्वत बनाए, उसमें और चीजें बनाना शुरू करी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने भगवान अर्थात मदन गोपाल जी की द्वितीय कार्य कर दी, और साथ साथ आठ सखियों को भी गर्व किया जो भगवान की प्रमुख सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा है ना, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, ये आठ सखियां अलग अलग पोज में अलग अलग वस्तुओं के साथ भगवान की सेवा खड़ी है, और अपने चार गोप को भी जो इनके मित्र हैं मधु मंगल सुबल इन सबको भी कार्य श्रीराम इन सबको भी कार्य किया, तो चार जो है अपने मित्रों को, आठ सखियों को, और शेष नाग भी जो है द्वितीय जो बनाए इनके ऊपर गोपीनाथ जी के ऊपर बनाए, और बताते हैं कि नीचे की तरफ मथुरा में जिस प्रकार जब रसलिंग हुआ था चांदी और मुष्टि के साथ तो उसका चित्र भी बनाया, अभी तो हमें नहीं दिखाई दिया ऐसा कुछ, अभी हमने भगवान को खाली बड़े सारे फ्लावर्स में देखा है, उसमें श्रृंगार के साथ देखा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं और जिनके अंदर इच्छा होती है कि इन सब को देखें तो मंगला आरती के समय सुबह 5 से 7 पुजारी लोग जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, यहाँ पर एक अच्छी बात तो हमने देखी है कि यहाँ पर जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो ओपन नहीं किया जाता है, देखा आप लोगों ने है ना, और सबके सामने करते हैं, ऐसे हम लोगों को साक्षी गोपाल मंदिर में गए तो साक्षी गोपाल जी का भी पूरा श्रृंगार उन्होंने सामने किया, तो यहां पर भी श्रृंगार सुबह सामने करते हैं, और मॉर्निंग के समय उन्होंने क्या करते हैं पुजारी लोग पूरे वस्त्र को हटाकर उस पूरे शिला को दिखाते हैं जो श्रीराम ने अपने धनुष सॉरी तीर के साथ कार्य किए थे, तो ये सारे साइन जो मैं बता रहा हूं ये सारे इनके भगवान के विग्रह के इर्द गिर्द हैं सारे, तो ये तब के विग्रह हैं, और ये बनाने के बाद सीता माता जी ने उनके अर्चन भी शुरू कर दी करना, तो वो पूजा करते थे रोज, और फिर जब रावण सीता जी को ले गए है ना, और उसके बाद जो इत्यादि हुआ तो फिर उसके बाद इनकी सेवा ब्रह्मा जी ने शुरू कर दी, लगभग आखिरी के 700 साल ब्रह्मा जी ने सेवा करी इन्हीं विग्रहों की, और फिर उसके बाद जब ये विग्रह की सेवा चित्रकूट में हुआ करती थी तो बताते हैं उड़ीसा के एक राजा थे लंगुना नरसिंह देव जी, एक बार ये अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट गए दर्शन करने के लिए, तो जब इस मंदिर पहुंचे जहां पर कि ये विग्रह थे तो बड़ा सुंदर पूजा किया, बड़ा सारा अर्चन किया, खूब उन्होंने ऐश्वर्य से भगवान की सेवा की इत्यादि, रात्रि में गोपीनाथ जी ना स्वप्न में बहुत आते हैं अपने शुद्ध भक्तों को, तो उनके स्वप्न में आए रात को, उनके स्वप्न में आके बोलते हैं कि भाई आप मुझे कहीं से ले चलो, मेरा नाम मदन गोपाल है और मुझे कहीं लेके चलो, यहां से अच्छी जगह पर मनोरम जगह पर मुझे यहां स्थापित करो, तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपके आगे, तो अगले दिन उन्होंने फिर उनको पहले तो नाम बदल के जय गोपाल जी रखा, जय गोपाल, और फिर इन विग्रहों को लेके चलने लगे, लेकर आए उड़ीसा में चित्रकूट कहां रह गया है ना, इधर आए और यहां पर पहुंचे तो भगवान रात्रि में वह फिर स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आके कहते हैं कि यह स्थान मुझे बड़ा मनोरम लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर तो बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े थनों के साथ खूब दूध डाले गए हैं, सुंदर अन्न पुष्प इत्यादि है सुंदर, तो मुझे यहां पर वृंदावन का आभास हो रहा है, तो आप मेरे को यही स्थापित कर दो, उनको फिर यही पर स्थापित किया गया, और उन राजा ने ये सुंदर जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर भी बनाकर राजा की जो पत्नी थी उन्होंने भगवान का नाम बदला और नाम रख दिया गोपीनाथ नाम रख दिया। तब से भगवान का नाम गोपीनाथ है और इस मंदिर की पूजा अर्चना तब से भक्त लोग इत्यादि कर रहे हैं। इसके बाद जैसे भी हमारे आचार्य की बात चल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु भी एक बार अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं वैसे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो एक बार उन्होंने रेमुना से संबंधित कथा करी उन विग्रहों के विषय में। और ये भी बताया जाता है क्योंकि जब इस जगह पर स्थल पर भगवान राम भी आए थे कब, जब उन्होंने लंका में विजय प्राप्त की थी तो सीता के साथ एक बार इस जगह पर भी आए थे। और ये भी बताया जाता है कि इस स्थान को इतना रमणीय जब भगवान ने बताया कि है मेरे लिए और मुझे तो यहां पर देखकर जैसे वृंदावन में रमन रीति है उसी तरह मुझे फील हो रहा है ये भी क्या है रमन रीति जैसा स्थान है। तो इसलिए भी कहते हैं इस जगह का नाम रमन से रमना पड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने निकटित पार्षदों के साथ ये कथा सुनानी शुरू करी माधवेंद्रपुरी के विषय में कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और एक बार वो जो वृंदावन आए और गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो इतने अच्छे भक्त थे कि एक तो उनकी सबसे पहला उनका गुण था कि वो अयाचक वृत्ति के थे। उनके विषय में लिखा कि वो अयाचक थे। अयाचक का मतलब जो याचना करके नहीं मांग कुछ भी खाना आता था लेकिन मानते नहीं थे कि मुझे दे दो। एक तो अयाचक थे ऊपर से दूध पे रहते थे दे दूंगा और इस प्रकार वो वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए पहुंचे और जब थके हारे पहुंचे तो किसी से कुछ मांगा नहीं बैठ गए रेस्ट कर रहे थे। तो अचानक क्या देखते हैं कि छोटा सा बालक सुंदर एक हाथ में मर्तबान लेकर डोल लेकर पहुंचा माधवेंद्रपुरी के पास और कहा कि ओ माधवेंद्रपुरी तुम किस प्रकार जो है फास्ट रख रहे हो ये लीजिए दूध। तुमने कभी कभी तो आप कौन हो कहते मैं तो इसी गांव का बालक हूं और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता इसलिए हम सबको भेज हैं। कहते तुम्हें कैसे मालूम पड़ा मैं भूखा हूं। कहते हमारे यहां पर कुछ गोपियों जो मतलब महिलाएं जो गांव की वो पानी वानी भर रहे थे उन्होंने आपको देखा उनको लगा कि वो भूखे हैं तो उन्होंने मुझे भेजा दूध लेके आपकी तरफ। कहते अच्छा बड़ी मधुर बातें कर रहे हैं और ले लिया क्योंकि अयाचक है आपको अपने आपको चाहिए तो फिर लेते थे तो उन्होंने लिया और दूध को पी लिया। इस बालक ने कहा ठीक है आप पी लो मैं भी कुछ काम से जा रहा हूं गांव के लिए तो मैं अभी आऊंगा ऑफिस तो आपसे ये डिब्बा वापस ले जाऊंगा। तो वो अब भगवान की बातों को उनका उन बालक की बातों का मधुर बातों का स्मरण करने लगे उनका जो सुंदर रूप था सुंदर चित्रण उसका स्मरण करने लगे कौन बालक था इतना सुंदर बालक क्योंकि उनको देखकर वैसे उनकी भूख प्यास कौन खत्म हो गई थी बट वो चिंतन कर रहे थे उसका और अचानक छोटी सी जैसी झपकी लगी तो अचानक वही बालक स्वप्न में आते हैं और कहते थे माधवेंद्रपुरी उठो और उनका हाथ पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं कहते हैं आओ देखो मैं यहां दगा पड़ा हूं मैं गोपाल ही तो हूं जिन्होंने गोवर्धन उठाया था लेकिन अब मैं क्या हूं यहां पर इन झाड़ियों के नीचे मिट्टी के नीचे दब गया हूं। क्यों दब गए भैया कारण क्या था कि उस समय मुगलों ने कभी जब आक्रमण इत्यादि किए थे तो विग्रहों को दबा दिया जाता था तो कहते मुझे दबा दिया गया और धूप बरसात गर्मी में मैं यहीं पड़ा रहता हूं तो तुम जल्दी से मुझे यहां से निकालो और फिर मुझे स्थापित करो गोवर्धन के ऊपर और फिर मेरा अभिषेक करो मुझे मेरा मतलब पूजा अर्चना शुरू करो। तो जैसे ही माधुरी ने पूरी की आंख खुलती है तो बड़े हैरान से हो जाते हैं, और क्योंकि भगवान का स्वप्न आया था तो शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है। तभी वो क्या करते हैं, आसपास के गांव वालों को एकत्रित करते हैं और उन सबको ले जाकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर भगवान ने इंगित किया था कि मैं यहां दबा पड़ा हूं। और जब खोदा जाता है तो वहां से निकलते हैं गोपाल जी, और फिर उसी दिन उन गोपाल जी को तुरंत जाके गोवर्धन पर स्थापित करते हैं, मंदिर निर्माण होता है और बड़ा ही अन्नकूट का फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसा फेस्टिवल और इतने कम समय में शॉर्ट नोटिस पे कि क्या क्या नहीं इकट्ठा होता, पूरे के पूरे गांव हर जगह तक खबर पहुंच जाती है और सब लोग दूध दही घी क्या क्या नहीं लेकर आते भगवान के, और बहुत बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल, दुनिया को प्रसाद बढ़ता है, इतना बढ़िया खूब भूषण ढंग से उनको स्थापित किया गया, पूजा अर्चना शुरू। बंगाल से कहते दो भक्त आए, उनको सेवा में लगा दिया गया। बताते कि दो साल बाद पूजा अर्चना चलती रही, लेकिन एक बार फिर गोपाल जी स्वप्न में आते हैं माधवेंद्रपुरी। आप क्या कहते हैं, कहते हैं माधवेंद्रपुरी तुमने स्थापित किया, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरी जो शरीर का जो ताप है वो कम नहीं हो रहा, इस भीषण गर्मी से मुझे राहत नहीं मिल रही, क्योंकि तो कितने समय तक नीचे रहा धूप गर्मी में, और अब मुझे मेरा ताप कम नहीं होता, तो तुम क्या करो, कहां जाओ, उड़ीसा जाओ, जगन्नाथपुरी, और क्या लाओ वहां से, मेरे वहां से चंदन लेकर आओ और उसको घिसकर मेरे शरीर पर लगाओ और तुरंत जाओ। तो माधवेंद्रपुरी में आओ, देखा ना, तो सीधा रेलवे स्टेशन टिकट बुक कराने के लिए टेंशन, कौन सी लू, थर्ड टायर, टू टायर, फर्स्ट टायर, ऐसा कुछ नहीं था, तो फ्लाइट में पूछी तो कुछ नहीं पूछा, तब था भी नहीं सब, लेकिन कुछ इस तरह के उपायों पर चर्चा नहीं करी, कुछ सोचा नहीं, भगवान ने कहा तुरंत जाओ, तो तुरंत का मतलब था वो निकल पड़े बस। कितनी दूर है वृंदावन से, व्यक्ति सोचता है साधन क्या होगा, कैसे जाऊं, क्या दिक्कत आएगी, क्या खाना ले जाऊं, अगर आने वाले तीन दिन रास्ते में रहना है तो पूड़ियां होनी चाहिए, आलू की सब्जी होनी चाहिए, अचार होना चाहिए, है ना, कितनी प्लानिंग करके आए, इतना बड़ा हमारा जितना ग्रुप है इसमें आधे लोग तो सेवा में लगे, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं, और भगवान के प्रति प्रेम उत्कंठा उसको पूरा करने के लिए निकल पड़े। और जब पहुंचे तो पहले कहां पहुंचे, यहां जहां आप लोग बैठे, हाँ इधर पहुंच गए, और जब पहुंचे तो यहां पर बातचीत सुनी तो पता चला कि यहां पर गोपीनाथ जी को अमृत केली नाम की एक खीर ऑफर होती है, जो बड़े ही सुंदर ढंग से बनाई जाती है और भगवान को ऑफर होती है, रात को निकलती है वो खीर। तो उनके हृदय में क्या आया कि भाई अपने गोपाल जी नहीं है वृंदावन में, है ना, तो अगर कहीं मतलब विचार आया अभी कि मुझे ये खीर मिल जाए टेस्ट करने को, तो इसका टेस्ट, इसको टेस्ट करकर मुझे ये मालूम पड़ जाएगा क्या बनी है, कैसे बनी, कितना मीठा है और कितनी स्वादिष्ट है, और ऐसी खीर मैं रोज खाऊंगा। हम तो एक दोनों यहां, दूसरा दोनों पीछे, तीसरा दोनों मम्मी, हम लोगों का तो तैयारी बड़ी अच्छी होती है, बट वो क्या करते हैं, क्या सोचा उन्होंने कि अपने गोपाल जी के लिए, लेकिन ऐसा सोचने के तुरंत बाद ही दूसरा विचार आया और छीछी करने लगे, कहते मैं तो अयाचक हुई थी कहूं भाई, और वैसे भी भोग लगने से पहले मैंने विचार कर लिया कि मैं अगर भगवान के इस खीर को मुझे मिल जाए तो, देखिए वो तो भगवान की सेवा के लिए सोच रहे थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको ठीक नहीं लगा, और उन्होंने स्थान को तुरंत छोड़ दिया और चले गए बाहर किसी मार्केट प्लेस में जाके बैठ गए, ठीक नहीं लग रहा था, रात का समय था, रात गुजारनी थी, उसके बाद अगले दिन सेवा शुरू करते थे। लेकिन इधर क्या होता है, हमारे गोपीनाथ जी जो कि भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, पुजारी के स्वप्न में आते हैं, जो रोज रात्रि में 12 कसोले खीर के भगवान के आगे ऑफरिंग के लिए रखता था और 12 उठाता था और बांटता था। रात को स्वप्न में आके, अब देखिए एक शुद्ध भक्त की वजह से पुजारी को भी स्वप्न में आने भगवान, उसको बोला अरे पुजारी उठो स्वप्न में, और कहा कि तुम तुरंत जाओ, आज मेरा एक बहुत ही अच्छा भक्त आया था जिसका नाम था माधेन्द्रपुरी, तुम तुरंत जाओ और उनके लिए मैंने क्या किया, उनको मैंने दिया क्या, उनके लिए आज जो आपने मुझे भोग लगाया था उसमें से एक कसोला मैंने क्या किया था, अपने पीछे छुपा लिया था, तो तुरंत तुम जाओ और वो कसोला खीर का मेरे भक्त माधवेन्द्रपुरी के दो, जो कि इस समय इस स्थान पर है। पुजारी जी बोलते हैं अरे बाप रे, भगवान स्वप्न में आए थे, तुरंत गए, स्नान किया, दरवाजा खोला और क्या देखते हैं, सच में गोपीनाथ जी ने एक कसोला अपने भक्त के लिए चुरा कर अपने पीछे रखा हुआ था, इस साइड में छुपा कर रखा हुआ था। अरे बाप रे बाप, पहली बार हुआ ऐसा, एक पुजारी रोज लिमिटेड सेवा करता है, उसको मालूम नहीं इसने उठाना ऐसा करना सब कुछ करना, लेकिन सब कुछ भगवान ने क्या किया अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए, एक ऐसा नाम अपने लिए करवा लिया। भाई भगवान को पतित पावन कहते हैं, है कि नहीं, तो इसमें पतित कौन है, हम लोग हैं, और पावन करने वाला कौन है, भगवान है। तो जो भगवान को पतित पावन बोलते हैं तो पतितों को उद्धार करने वाला बोलते हैं, है कि नहीं। तो केवल भक्त भजन में बताते हैं कि आपका नाम तो पतित पावन है, ये सार्थक तभी होगा जब आप हम जैसे पतितों का उद्धार करो, नहीं तो फिर ये नाम बेकार है आपके पास, यही टैग ले लेंगे हमसे। तो कई भजन भक्त लोग इस तरह की बात करते हैं, भाई हम जैसे पतितों का उद्धार करो तो जाने, ठाकुर जी इतने सुंदर भजन गाए, उन भजनों में हर जगह बता रहे हैं कि उद्धार करो, अनर्थों को खत्म करो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं ना जी। तो भगवान वास्तव में पतित पावन है, लेकिन इस लीला में क्या किया, अपने एक भक्त के लिए भगवान ने एक ऐसा नाम, एक ऐसा काम किया जिसे एक ऐसा नाम मिला, क्या नाम माना, चोर कहलाना भी पसंद किया भगवान ने अपने भक्त के लिए। एक बार हम पर्सन बोल दिया था कि यही बात एक व्यक्ति ने ना किसी फिल्म में था कि उसके सर पर लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है, वो व्यक्ति पूरे फिल्म में परेशान ही रहा, किसने लिखा बताओ, किसने लिखा, तूने लिखा क्या, किसने लिखा ये बताओ, किसने लिखा ये, और सही तो लिखा है अरे भाई तेरा बाप भी चोर है और मेरा बाप भी चोर है और हम सबका बाप है कि नहीं, तो परेशानी की बात क्या है, रिलेशन नहीं है ना, गीता नहीं पढ़ी, कृष्ण बुक नहीं पढ़ी उसने, भाई खीर चुराई, शरीर के तो पिता होते हैं ना, तो हमारे आत्मा के पिता कौन है, भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन थे, अहम बीज प्रदापिता मुंगेवांश जीव लोके जीव भूत सना, ये सारे मेरे तो अंश है, सारे मेरे तो संतान है, माता माता दाता पिता महास्य सब बोले भगवान ने हमारे बारे कि मैं हूं सब कुछ जगत का, और व्यक्ति कंफ्यूज घूमता रहा कि किसने लिखा बताओ, भाई हरि नाम है उनका, क्यों, क्योंकि वो अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं, हरि नाम है उनका क्योंकि वो अपने भक्तों के हृदय के सारे पापों को हर लेते हैं, कहते हैं डरे मत मां शुचा, डरने की जरूरत नहीं, जस्ट सरेंडर टू मी, मैं हर लूंगा सब कुछ। चोर है वो क्यों? क्योंकि गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। चोर है वो इतनी स्कीम बनाते हैं सुबह से लेकर शाम तक वृंदावन में, इतनी बड़ी टोली है उनकी, एक से एक शातिर व्यक्ति उनके पास है जो एक व्यक्ति जाकर पता लगाते हैं कहां पर पटकियां, कहां चाबी रखी है, कहां पर रखा मक्खन है ना, कौन कब जाएगा, उनको बातों में कौन लगाएगा, वो उधर आए तो फिर कैसे कैसे घुसेंगे, जहां कुछ नहीं मिलता आप बच्चे को मार कर आए थे है ना, कुछ नहीं मिलता आपको, चोटी कपड़े बांध कर आए थे, बच्चे को चोटी मार कर आए थे, पिछाब करके आते घर में, ऐसे करते हैं, एकदम निखट्टू है। और इस प्रकार की सुंदर लीलाओं से पूरे वृंदावन को मोहित करते हैं। और यहां पर अपने एक भक्त के लिए खीर का प्याला भी चुरा लिया, ठीक है, क्या दिक्कत है, चोर कहना पसंद है। और ऐसे एक नाम ले लिया, बताइए आज पूरा संसार कहीं गोपीनाथ से नहीं जानते होंगे, खीर चोर बोलने पड़ेगा आप कहा जाना, अच्छा गोपीनाथ भी नहीं बोलते, क्या बोलते, कहा जाना, खीर चोर जाना, खीर चोरा, खीर चुराई थी उन्होंने, तो इस नाम से फेमस। वृंदावन के वासियों को, मथुरा के वासियों को जरासंध के फालतू के अटैक से कई बार हराया उसको, फिर भी मानता नहीं था, लंबी समय लेकर आने की कोशिश करी, लेकिन बार बार क्यों आ जाते हैं, चलो इन लोगों को टेंशन ना हो, समस्या ना हो, तो मैं रंग छोड़ देता हूं, रंग छोड़ दिया। अरे भाई तुम कृष्ण, तुम रंग छोड़ रहे हो, अरे तुम्हें देखकर लोग रंग छोड़ देते हैं, लोग प्राण छोड़ देते हैं, तुम रंग छोड़ रहे हो जरासंध को, लेकिन अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए क्या कहलाना पसंद किया, रंग छोड़। अरे लो अब सोचे पहले, मतलब ऐसा नाम जो डिफीटेड नाम है, रंग छोड़, किसकी किसकी पूजा करते, भक्ति करते, रंग छोड़, किसकी भक्ति करते हो, कैसे ना, कौन है भाई तुम्हारे भगवान, इसलिए इनको भक्त वत्सल कहा है, इसलिए इनको पतित पावन कहा है, इसलिए कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, इसलिए कृष्ण से हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, हर व्यक्ति को कितनी तरह की मेंटालिटीज आ रही है संसार में, कितनी तरह के पापी दुष्ट कपटी अलग अलग गुणों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन अपने हिसाब का गुण भगवान में देख ही लेते हैं, कैसे नहीं अट्रैक्ट करेंगे, कितनी तरह की क्वालिटीज है भगवान में, सुंदर इतने हैं कि सारी माताएं गोपियां फिदा रहती है ना, अगर स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ रहती है, अगर वो परम पुरुष की तरफ लगा दे तो गए, कई शूद्र मेंटालिटी के होते हैं, काम करवा लो जितना बड़ी सुबह से शाम तक, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने काम करने की टेंडेंसी को कृष्ण के प्रति लगा ले तो कहता धाम है ना, चोर लोग अट्रैक्ट हो जाते है ना भगवान का, अच्छा ये तो अपनी बिरादरी का भाई तो इनकी पूजा करेंगे, उनको तो अट्रैक्टेड हो, जैसे कई लोग वो अब भगवान ये सब तो नहीं दे पाते, लेकिन वो आजकल वो चल रहा है कावर सिस्टम, तो उसमें शिव जी से भी अट्रैक्ट होते हैं लोग, तमाम उनके लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई अपनी जैसे बोले की फौज, तो उनको लगता है ये मूज ठीक है, तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं भगवान अट्रैक्ट करके उनको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए कृष्ण शब्द का जो मतलब है उसका मतलब है सर्व आकर्षक, भगवान के अनंत नाम है, उनकी लीलाओं से संबंधित प्राइमरी नेम्स सेकेंडरी नेम्स है ना, परमात्मा सृष्टिकर्ता जगन्नाथ है ना, ये सेकेंडरी नेम है भगवान के सृष्टि से संबंधित, लेकिन प्राइमरी नेम कौन से हैं, जो लीलाओं से संबंधित है, गिरधारी क्या किया था जी, गोवर्धन उठाएगा, माखन चोर, रास रसैया बोलते ना, रास रचाया था, यशोदा नंदन, तो इस प्रकार के सुंदर नाम, माधुर्य से भरपूर नाम भगवान के। लेकिन जो कृष्ण शब्द है इसका मतलब है एक तो सांवला भी बोलते हैं, दूसरा सर्व आकर्षक,
कश्यप का मतलब है सर्व में आ गए सभी योनियां, सभी बोलियां, सभी जेंडर, सभी तरह के काम करने वाले लोग, सभी प्रकार का समय, काल, परिस्थितियां, योग्यताएं, सर्व आकर्षक, सभी प्रकार के धर्म, सभी प्रकार के देवता, सभी प्रकार के निचले लोकों में रहने वाले लोग, सब लोग आकर्षित है किससे?
कृष्ण से।
इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट नाम क्या भगवान का? सर्व आकर्षक। एक शब्द में बोलना हो तो
कृष्ण।
तो ऐसे हैं कृष्ण, और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कैसे भक्तों के लिए? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तेव भजामि हम। जो जिस मात्रा में, जिस डिग्री में, जिस उत्कंठा के साथ मेरी ओर बढ़ता है, भगवान कहते मैं भी उसकी प्रकार उसी तरफ उसी तेजी से बढ़ता हूं। 6 महीने ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, प्रकट हो गए, है ना। शत्रु को 50,000-60,000 साल तक तपस्या करते थे, नहीं होते थे, प्रकट नहीं होता लगे। प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी ने बोला कहां तेरे भगवान? इस खंड में, हर जगह जाते थे, इस खंड में कहते हाँ इधर है। तो बात को पूरी करने के लिए उधर से निकल कर आ गए। तो जो भक्त लोग इस प्रकार की योग्यता बनाते हैं, तो भगवान उनके स्वप्न में भी आते हैं, उनके साथ लीलाएं भी करते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। और देखिए ना, अगर हम लोग अपना सुबह बताए शाम चिंतन करें धन का, वुमन का, या किसी और चीज का, तो स्वप्न भी कैसे आते हैं? वैसे आएंगे। और अगर चित्त में हम लोग कृष्ण के अलावा, कृष्ण के पार्षदों के अलावा कुछ ना रखें, तो निश्चित रूप से भगवान के भक्तों को भगवान का दर्शन होगा और स्वप्न में भी आएंगे। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के साथ सब करके, और टोटल क्रिएशन का कहते हैं 75% स्पिरिचुअल क्रिएशन है, 25% केवल मटेरियल है। तो जो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं भगवान के साथ, वो ऑलरेडी परफेक्ट है, साथ में रह रहे हैं। उधर कितने कितने लोग यहां से इस भौतिक जगत से चले गए, भगवान बोलते हैं, कई बार रेफरेंस देते हैं, कई लोगों ने इस तरह भक्ति करके पहुंच गए मेरे पास। तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कुछ अलग सा नहीं कर रहे, हम भी उसी पाथ को और उसी माध्यम को अपना रहे हैं जो हमारे आचार्य ने हमें दिया। बड़ा ही ऑथेंटिक, बहुत ही प्रमाणिक और गारंटी तक दी। वो बात अलग है कि गारंटी शास्त्र में दी है, अपनी वाणी से दी है। आपको कुछ ऐसा लगे कार्ड नहीं मिला, 7 ईयर गारंटी, गारंटी टाइप का कि इतने में तो जानगे जानगे, नहीं। तो भगवान के भक्तों के शब्द में ही पूरी गारंटी है। तो निश्चित रूप से भक्तों को जो है अपनी योग्यता इस प्रकार का बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन निर्भय की तरह नहीं रहना चाहिए जो हर बात पर बोले पहले दिखाओ तो मानूंगा। हमको कैसे समझा सकते हो ऐसे व्यक्ति को कि भगवान ने ये लीला करी, भगवान इस प्रकार दामोदर शिला से प्रकट हुए? नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को। और कितनी बड़ी इसी संसार में जनसंख्या ऐसे लोगों की जो विग्रहों को नहीं मानती, भगवान के रूप को नहीं मानती, बड़े बड़े समागम होते हैं उनके, लेकिन नहीं, उन पर कृपा नहीं है। तो हम लोगों के ऊपर कृपा है, हम लोग ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय में जुड़ गए, तो हमें अपनी योग्यता ऐसे बनानी चाहिए ताकि भगवान हमारी ओर को निहारे। तो ऐसे भगवान अपने भक्त के लिए अपने नाम बदलवा लिए बताइए। और जब वो खेत का कसोला लेकर पहुंचा मार्केट में, अरे भाई माधवेंद्र पुरी कौन है? कोई है माधवेंद्र? तभी बहन जी नाम बोलो, कहते ये लो ये खीर आपके लिए, स्वयं भगवान ने आपके लिए चुराई खीर, मुझे स्वप्न में आके बताया, मैं ले गया आपके लिए। माधवेंद्र पुरी, हाथ जो है बड़े भाव विभोर हो गए, एक्सटेसी में उनके हाथ, छोटी सी बात पर भक्तों के अंदर तो एक्सटेसी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और तुरंत जो है खीर का स्वाद चखा और फिर उसको उल्लड़ को भी तोड़कर अपने पास पोटली में बांध लिया, ताकि मैं ऐसा नहीं कि उसको खाया के बाद भागूंगा, ना नहीं, उसको मिट्टी को भी खाएंगे कहते, क्योंकि भगवान ने अपने हाथ से उसको मेरे लिए चुराया था। कभी हम लोगों ऐसा नहीं करना पड़ा, स्टील की प्लेट हमारे पास है या पत्तल हमारे पास है, तो जी उसमें प्रसाद मिला था बड़ी मुश्किल हो गई, तो क्योंकि भगवान ने चुराया था इसलिए माधवेंद्र गुरु पाद ने उसको बता सकते और उस स्थान को तुरंत छोड़ दिया। कारण कि अब बातचीत होना शुरू हो जाएगी और लोग जो है उनको भगवान मानने बैठेंगे, कहेंगे बस तुम ही हो सब कुछ, भगवान ने तुम्हारे चुराए, जय जयकार शुरू हो जाएगा, और भक्त के लिए तो इस प्रकार का प्रतिष्ठा जो है किसके समान है, विष्ठा के समान है। ये क्या होती है पता है, स्टूल, और वो भी किसका, हॉग स्टूल, विष्ठा के समान है। एक भक्त के लिए अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा रखना उनके अंदर तो दूर दूर तक नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने कहा नहीं, और वो निकल पड़े कहां, अपने मेन बिजनेस में, कि मुझे क्या लाना है, चंदन लेकर आए। थोड़ी सी उनको पता चला और उन्होंने आसन बिछा लिया, राव जी अपना दीक्षा दू और चलो, ऐसा कुछ नहीं, पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचे तो पहले पता चल गया लोगों को, अगर खबर तो हो जाती थी, हमें इस गांव में पता चला, दूसरे गांव में पता चला, उनसे पहले वहां पर खबर पहुंच गई कि माधवेंद्र पुरी है, भगवान ने गोपीनाथ ने इनके लिए खीर चुराई थी। तो बड़ा उनके आओ भगत हुए, बड़ा उनको मदद की गई, उन्होंने कहा अच्छा मुझे चंदन भेजी, मुझे जाना है, चंदन और कपूर मिला उनको और उनके साथ एक दो व्यक्ति दिए, उनके कहा कि आपकी मदद करेंगे और रास्ते में जितनी चंगियां पड़ती हैं सब जगह हेल्प करेंगे आपकी। तो फिर वो लेकर आने लगे और जब लेकर आ रहे थे तो दोबारा कहां है, इसी मंदिर में, और यहां रुके। रात्रि में क्या हुआ, फिर से स्वप्न आया, और इस स्वप्न में कौन आए, गोपाल जी, बोलिए गोपाल जी को, वृंदावन आने गोपाल जी आए, और गोपाल जी ने उनको स्वप्न में कहा आकर कि वे माधवेंद्र को जो गोपीनाथ जी इधर हैं उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, तो आप जो चंदन लेकर आ रहे हो आप एक काम करो, इस चंदन को घिसो और वो चंदन गोपीनाथ जी को लेप लगाओ, गोपीनाथ जी के शरीर पर लगेगा उनको ठंडक मिलेगी तो मुझे भी ठंडक मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। क्या ठीक है, अगले दिन से उन्होंने पुजारी को स्वप्न बताया, पुजारी लोगों बड़े खुश कि हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा, और वो चंदन को घुसा गया और बताते हुए रास्ते 21 दिन तक चलता चंदन का उत्सव और भगवान के शरीर पर लेप किया, और आशा करते कि शायद उस फेस्टिवल का कुछ चंदन हमें भी मिल जाए, क्योंकि जब जब हम आते हैं तो ये गोल का चंदन होता है और भगवान के शरीर से उतरने वाला चंदन ये भक्तों को देते हैं, अगर कहीं कुछ चंदन हमें मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, कोई भक्त लोगों के प्रयास करें। तो इस प्रकार जो है माधव पंडित जी ने 21 दिन तक चंदन लगाया भगवान के शरीर पर और उनको पूरा संतुष्टि प्रदान करी। इधर गोपाल जी जो थे बाद में गोपाल जी कहते हैं कोई राजा उनको वहां से कहीं और ले गए और उसके बाद जयपुर मतलब राजस्थान में, और अभी नाथ द्वारा के नाम से आप इनका दर्शन कर सकते हैं उदयपुर से पहले, अगर आप कभी दर्शन करने जाएं नाथ द्वारा तो ये गोपाल जी वहां शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत सुंदर श्रृंगार होता है इनका भी, बहुत सुंदर प्रसाद भोग लगता है और दर्शन होता है। तो एक तो ये है गोपाल जी और दूसरा खीरचूर गोपीनाथ हमारे सामने हैं जिनका हम लोग कथा कर रहे हैं। कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि उन स्थलों का दर्शन कर पा रहे हैं, उन विग्रहों का दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे भी मुरलीकृष्ण कह रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा अपने पार्षदों को सुनाई, कोई फेक स्टोरी नहीं है, स्वयं भगवान है और अपने परम गुरु के द्वारा घटित घटना अपने साथियों को सुना रहे हैं। और हम लोग यजंत ही सुमेध सा जो इस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में है बहुत विद्यमान है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। और हम सब लोग उस स्थान पर इस समय मौजूद हैं जहां पर ये घटना घटित हुई खीरचो गोपीनाथ जी की, और उनका हमने दर्शन किया। इसके साथ साथ अभी हमने आप सब ने किया होगा साक्षी गोपाल ऐसे विग्रह है जो स्वयं वृंदावन से चलकर आए अपने भक्त की साक्षी देने के लिए। वो कहते हैं मैं चल कैसे सकता हूं, मैं तो विग्रह के रूप में खड़ा हूं। कहते हैं बोल सकते तो चल नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा और मेरी साक्षी देनी पड़ेगी। एक भक्त का कोमल हृदय, सरलता, उसकी ईमानदारी, ये सबसे बड़ा आभूषण है जिससे भगवान बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। कूटनीतिज्ञ, चलाक, चंट, तेज, चतुर, शाणा, ऐसे शब्द जो हैं, इस तरह के शब्द हम लोग मार्केट में मिलते हैं हमें, और उन लोगों के लिए बोले जाते हैं जो लोग समाज में बड़ी जिनकी चलती है कि ये तो जुबान भी खाता है। तो हम लोग जब देखते हैं ऐसा व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा बनने से, ऐसा बनने से लोग उसको मानते हैं, वो एक दो नंबर का काम भी कर देता तो भी पता नहीं चलता है ना, इधर का इधर कर देता तो पता नहीं चलता, उसको धोखा देते तो पता नहीं चलता, तो हमें लगता है आइडियल पर्सन है, ऐसे बनना मेरे बराबर। लेकिन भक्तों के समाज में जो व्यक्ति जितना सरल होगा, जितना ईमानदार होगा, ईमानदार का मतलब है अपनी हर डीलिंग्स में, अपनी साधना में, अपने भक्तों के साथ रिलेशन में ऑनेस्टी का व्यवहार करना, अगर हम इन गुणों को प्रयास करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। समस्या बस ये है क्योंकि चार प्रकार के डिफेक्ट हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। क्या क्या है वो? इम्परफेक्ट सेंसेस, टू बी इलूजन, टू कमिट मिस्टेक एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, यह इनबिल्ट है। और ये होता है, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, धोखा भी दे देते हैं, चीटिंग भी कर देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, एक लड्डी लिया दूसरा अपने हाथ डाल देते हैं। किसको पसंद है लाइन में खड़ा होना, मालूम है लोग खड़े विश्व खड़े हैं, ठीक है फिर वो है छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर ध्यान दें है ना, मालूम है कि प्रसाद कम है, बांटने वाला बेचारा देख रहे हैं ओके कम पड़ा यार थोड़ा होगा, प्रसाद कम है ना, अपना चिंतन लगा कि मेरी पहले प्लेट लगा लो, फिर तो हंस हंस के देता हम जी लो जीता हाँ जी लो खतम ताली बजाए हरी बोल प्रसाद अपनी प्लेट लेके साइड में। इनसिक्योरिटी, अयाचक, माधविंद पूरी अयाचक है, मांगते भी नहीं कुछ फिर भी आता है, अयाचक का मतलब जागर वृत्ति बोलते हैं, पेड़ पे जैसे अजगर आएगा तो खाएंगे, कुछ नहीं पूछना मीनू की आज का कुछ नहीं आना, अपना भी व्यक्ति आकर टहलता है खुद अंदर कहीं नहीं जाता है, अपना पाएगा कोई नहीं देख रहा, घूमते घूमते लड़ते लड़ते एक भड़क लो अंदर अपना पा रहा है। अयाचक क्यों अयाचक बनना है, या ऐसी वृत्ति का भगवान क्यों रक्षा करते हैं, क्योंकि कहते हैं अकिंचन वित्ताय, ये श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी की शिक्षा में जब आता है चर्चा तो एक शब्द इस्तेमाल करती है अकिंचन वित्ताय, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस है ना, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल निर्धन है, निर्धन का मतलब उस तरह से मत लीजिएगा, मतलब जो सरल है, ईमानदार है, अयाचक है, ऐसे व्यक्ति का धन कौन है, कृष्ण है। इसमें भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्ताय, क्या है, अक किंचन के उस गरीब व्यक्ति के धन है भगवान, और जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास कृष्ण नहीं है उसके पास जो है वो सब मिट्टी है। दुर्योधन ने कहा मुझे सारी सेना दे दो, ले लो, लड़ाने सेना ले लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, आज तक विजय रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ले लो। अर्जुन के पास क्या? कृष्ण था। तो विजय किसकी? अर्जुन की। तो अकिंचन लोगों का जो धर्म है वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द में सब कुछ है, वृंदावन भी है, सारे पार्षद भी हैं, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो किसी व्यक्ति को ये लगे अरे ये तो सुदामा बड़ा दरिद्र, खाने के कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? हरिनाम है। हरिनाम 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 ही वो केवल, उसके पास हरिनाम है, और हरिनाम से बड़ा धन उसके और किसी के पास हो नहीं सकता। तो हम लोग भी धनी बन सकते हैं, कृष्ण हमारे वित्त बन सकते हैं, अगर हम लोग अकिंचन हो, अगर हम लोग रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशानुग्रह में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को खतरनाक प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं है मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने की, ये बन जाओ फिर ये हो जाए, लेट्स मेक अ डेंट ऑन दिस अर्थ, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। क्या जरूरत है भाई, क्यों खड्डा कर रहे थे? क्या जरूरत क्या है? अरे माला कर लो, पांडव ज्यादा हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं रखे, क्या करोगे तुम इधर कुछ करके? नहीं मैं ये कर दिखाना, मैं ये बनूंगा और मैं ये लाना फलाना ढुमकाना, अरे कितने टाइम के लिए ये शरीर? बात मालूम ही नहीं है, परीक्षित माउज में आ रहे हैं 7 दिन है मेरे, अपने को तो पता भी नहीं है कब कहां कैसे भाई बोल हो जाए, लेकिन जितना भी हो उसमें हम लोग अगर इसी संसार के संस्कारों को छापते रहेंगे ना, ऐसे प्रेस लगा ली हमने, यूजलेस चीजें छाप रहे हैं अपने मन से, ये ले ये ले ये ले, और जितना इकट्ठा कर लिया कुछ यूज नहीं उसका, एक तिली में आग लगा के सब जीरो। लेकिन अगर आध्यात्मिक धन कमाते हैं वो क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ, वो क्या है? भक्तों का संग, वो क्या है? कृष्ण कथा, वो क्या है? हरिनाम। अगर हम लोग ये धन कमाते हैं तो ये हमारे साथ जाएगा। तो हम लोग अपने इन आचार्यों के जीवन को देखकर, उनकी इन प्रार्थनाओं को पढ़कर, मजिस्ट्रेट थे भक्तिविनय ठाकुर जी, उनकी दिनचर्या देखी, 100 तो पुस्तकें लिखी मजिस्ट्रेट होने के बावजूद, और इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो भगवान के सामने जाकर बोलते भी नहीं है, भगवान मैं बड़ा गंदा हूं, तो बोलता हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया है, मैं ऐसा भी हूं, मैं ये सोचता हूं, कहां निकलते बात हूं। इसलिए बोला इनको पढ़ लें, ये रिपीट करने तो अपना आ जाएगा, इसमें 1000 के नोट में सारे नोट आ जाएंगे। तो इनसे प्रार्थना करना शुरू करें, इनके मूड को समझना शुरू करें, और फिर भगवान के सामने प्रार्थना करें। खाली दर्शन के ये देखा, ऐसा देखा, ऐसा कर रखा था, वो चलो अच्छा है ये भी, लेकिन प्रार्थना भी करनी चाहिए, अपने हृदय को भी खोलना चाहिए, और सुधरने के लिए जैसे 3-3 भजन गाए गोगनाथ जी के ऊपर, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम सुधरें। टाइम नहीं है ज्यादा किसी के पास, तो हमारे पास भी नहीं है, मल्लिकेश्वर आ गए, तो इसलिए प्रयास करें इन प्रार्थनाओं को पढ़ने का और उन आचार्यों को जीवन को देखने का, ताकि हम लोग उनसे कुछ सीख लेकर अपने जीवन में कुछ अच्छे गुणों को अपनाकर इस जीवन को सार्थक कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। माधवेंद्र पाठी चल रघुनाथ की मानन
केशव ने हमको ज्वाइन किया लास्ट 2 दिन के अंदर इस यात्रा, और उसके बाद हरे कृष्णा, तो वहां पर थैंक यू कि उन्होंने अपना समय निकाला और 2 दिन हमारे साथ बिताए। अभी आप सब भक्तों के बाद महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कृपा करके कोई किधर भी मत जाइए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अभी हम स्ट्रेट यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे, 5 मिनट भी है, 3-4 मीटर की दूरी पे शुद्ध आप माधवेंद्रपुरी की समाधि मंदिर है, तो वहां पे जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, तो शुभ माधवेंद्रपुरी करते थे 24 घंटे वहां का नाम लेते थे, तो हम वहां पे लगभग 45 मिनट कीर्तन करेंगे। क्या तो थकिएगा मत, वहां पे थोड़ी गर्मी है, लेकिन लगभग लगभग 40-45 मिनट का कीर्तन होने हमारा प्रयास है। तो अभी हम कीर्तन करते स्ट्रेट निकल जाएंगे, आप हमको फॉलो कीजिए, ठीक है, और वहां पे जाएंगे। और एक दूसरी बात जो अभी कृष्णा वो कह रहे थे, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, मत पूरा वर्ड नहीं सुन पाए, लेकिन रात्रि के अंदर की भगवान दाते हैं, जाते हैं भगवान के सामने और ये ड्रेसिंग क्या वो ड्रेसिंग क्या सब बात करके निकल आते हैं। एक्चुअली अभी हम वहाँ जो पुजारी पुजारी तो नहीं बाबा जी बैठते हैं, तो बोल रहे क्या आदमी आते हैं फोटो खींच के आते हैं, सबसे पहले कैमरा निकालते हैं फोटो खींचते, अरे पूरी गोस्वामी बात थोड़ी रहे यहाँ से, ऐसा नहीं आपको, तो बोले 2 मिनट बैठो, दर्शन करो, प्रार्थना करो, उसके बाद में कुछ करना करो, है कि नहीं। तो ये वास्तविक सदाचार है, तो हम अधिकांश डीटी के सामने जाते थोड़ा करे कैमरा निकलते हैं, तो वास्तविकता में हमने हृदय रूपी कैमरे में बैठाना चाहिए भगवान को, आंखों के लेंस से देखना चाहिए और हृदय के मेमोरी में उसको शेयर करना चाहिए।
तो देखो भैया डीटी का माधवेंद्रपुरी गोस्वामी समाज